हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव को जब एहसास होने लगा कि वो तारा को पसंद करने लगा है, तो उसने अपने इमोशंस के जाल से निकलने के लिए मेहर से शादी करने का सोचा। उसने आधी रात को मेहर को कॉल किया और उसे अपनी सगाई की तैयारी करने को कहा। ध्रुव ने ही प्लान किया था कि वो मेहर से जल्द शादी करके उसे अपने साथ लंदन ले आएगा और फिर वहां से वो बाकी तीन पड़ाव के लिए निकल पड़ेगा। मेहर भी काफी खुश हो गई थी। वो अपने और ध्रुव की सगाई की तैयारी में जोर शोर से जुट गई थी, इसलिए वो अगली सुबह ही दिल्ली से मुंबई आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अलीशा और वीर तारा के साथ युग के विला में रह रहे थे। सगाई राणा मेंशन से होनी थी, इस वजह से सारी तैयारियां वहीं पर हो रही थी। वे तीनों ही ध्रुव की सगाई से बेखबर थे। सुबह सुबह वीर, अलीशा और तारा साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उस ब्रेकफास्ट को उन तीनों ने मिलकर बनाया था। वीर ने अपने बनाए हुए जले हुए सैंडविच को देखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि ये खाने लायक होगा। अगर मेरी मॉम ने इसे देख लिया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। उसकी बात सुनकर अलीशा और तारा दोनों ही हंस पड़े थे। अलीशा ने कहा, आई लव मीरा आंटी। जहाँ लोग अपने बेटियों को कुकिंग और बाकी घर के काम सीखने के लिए फोर्स करते हैं, वहाँ वो अपने बेटे को ही सब सिखाने में लग गई। हाँ, क्योंकि वो इक्वालिटी में बिलीव करती हैं। उनकी इस थ्योरी के चक्कर में मेरी बैंड बजी रहती है, वीर ने सिर हिलाकर कहा। फिर अलीशा और वीर दोनों ने ही तारा का बनाया हुआ परांठा खाया तो वे दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उनके इस तरह देखने पर तारा ने जल्दी से घबरा कर पूछा, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? मैंने इससे टेस्टी आलू का पराठा कभी नहीं खाया है, तुमने कहाँ से बनाना सीखा? अलीशा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोगों ने ज्यादा देसी फूड ट्राई नहीं किया है, लेकिन जितने भी खाए हैं उनमें ये बेस्ट लगा है, वीर ने भी उसकी तारीफ में कहा। तारा उनकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराई और फिर एक बाइट टेस्ट करके कहा, ये वाकई काफ़ी टेस्टी है। मुझे ज़्यादा कुकिंग करनी नहीं आती है, लेकिन आलू का पराठा मैं सच में अच्छा बनाती हूँ। मेरी नानी ने मुझे सिखाया था, ये उनकी सीक्रेट रेसिपी है। वे सब साथ में अच्छे से खाते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, तभी अलीजा वहाँ पर पहुँची। कोई उसे कितना भी क्यों न समझा दे, लेकिन अलीजा को तारा बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही उसे अब तक उस पर यकीन हुआ था। तारा की तरफ देखकर अलीजा ने मुंह बनाया तो वहीं तारा के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। अलीजा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और खुद से ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ घर पर इतना काम चल रहा है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, और तुम यहाँ इस लड़की के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हो? कौन सा काम, और तुम कब से काम करने लग गई? अलीशा ने भौंहें उठाकर पूछा। हाँ, तुम लोगों को कैसे पता होगा, तुम लोगों को तो अजनबियों के साथ रहने से ही फुर्सत नहीं मिलती। चलो मैं ही बता देती हूँ कि एक हफ्ते बाद ध्रुव वापस आ रहा है। उसकी और मेहर की शादी की रस्में एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगी, जिसमें पहले उनकी सगाई है और फिर उसके 5 दिन बाद में उनकी शादी, अलीजा ने मुस्कुराते हुए बताया। वो जानबूझकर तारा को चिढ़ाने के लिए तेज आवाज में बोल रही थी। अलीजा की नज़रें तारा की तरफ थीं, जो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मन ही मन तारा के अंदर एक तूफान सा चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा हो। वहीं ध्रुव की शादी का सुनकर अलीशा और वीर भी कुछ खास खुश नहीं हुए थे। अलीशा को ध्रुव के लिए मेहर से ज्यादा तारा पसंद थी। हम लोग तो यहाँ हैं, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ बैठकर हमें ज्ञान देने के बजाय उनके काम में हेल्प क्यों नहीं करती? वैसे भी हमारा इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गेस्ट की तरह हम भी अटेंड कर लेंगे, अलीशा ने उसे ताना मारते हुए कहा। वैसे भी वो उसमें काफ़ी परफेक्ट थी। अलीजा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुम सास की तरह फिर से ताने मारने शुरू हो गई? मैं तो खुशखबरी सुनाने आई थी, लेकिन देखो कैसे मुंह सड़ा रखा है। हाँ, क्योंकि हमें तुम्हारी सो कॉल्ड भाभी पसंद नहीं है, अब निकलो यहाँ से, अलीशा ने उसकी बात का जवाब दिया। अलीजा ने जाने से पहले वीर की तरफ देखा, वो बोली, तुम तो उसके दोस्त हो, क्या तुम भी उसकी खुशियों में शामिल नहीं होगे? उसकी खुशियों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए उसका दिया हुआ काम है, सॉरी टू से मैं नहीं आ सकता, वीर ने सीधे सीधे मना कर दिया। हाँ, तुम क्यों आओगे, अलीजा ने चिढ़कर कहा। उसका इशारा अलीशा की तरफ था। वीर अलीशा को पसंद करता था और अब तो उसके पास अच्छा मौका था जब वो बिना किसी बहाने के अलीशा के साथ रह सकता था। उन सबके मना करने के बाद अलीजा ने भी उसे फोर्स नहीं किया और वो नाश्ता कर रही थी। उसने खाते हुए कहा, वैसे ये पराठे काफ़ी टेस्टी हैं, मुझे नहीं पता था अलीशा तुम खाना बनाने में इतनी अच्छी हो गई हो। मुझे मॉम से कहना चाहिए कि तुम्हारे लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हारी भी शादी कर देनी चाहिए। अलीजा बातों ही बातों में वीर को परेशान कर रही थी। अलीशा की शादी का सुनकर उसका खाना अटक गया था, तो वहीं अलीशा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, जिसे जल्दी लगी है वो खुद कर ले। तुम्हें तो तारा पसंद नहीं है ना, फिर उसके बनाए हुए पराठे क्यों खा रही हो? चलो छोड़ो इसे, अलीशा ने हल्के गुस्से में कहा और अलीजा की प्लेट अपनी तरफ खींच ली थी। हाँ तो ठीक है, वैसे भी मुझे ये नहीं खाने, पता नहीं इस लड़की में इसके अंदर क्या मिलाया होगा, अलीजा ने चिढ़कर कहा। वीर और अलीशा उसे अच्छे से जानते थे। जब तक वो दोनों उसके पास बैठे रहते, तब तक अलीजा उन्हें परेशान करने के लिए कुछ न कुछ कहती रहती। ये सोचकर उन दोनों ने अपनी प्लेट उठाई और वहां से जाने लगे। तारा इन सबके बीच बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उन दोनों के जाने के बाद वो भी उठने को हुई, तभी अलीजा ने जल्दी से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। तारा उसकी तरफ पलटी और भौंहें उठाकर बोली, एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। अलीजा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, वैसे भी मुझे पकड़ने का शौक नहीं है। बोलते हुए अलीजा तारा के बिल्कुल पास आई और उसकी आंखों के कोने में लगे हुए आंसुओं को अपनी उंगली पर लेकर उसे झटकते हुए कहा, बुरा लगा ध्रुव की शादी का सुनकर, तुम्हें क्या लगा था कि वो तुमसे शादी करेगा? ओ माई गॉड, तुम कितनी बेवकूफ हो, कभी उसकी होने वाली दुल्हन को देखा है तुमने? कहीं से भी तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। बेहतर होगा कि अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो मेरे भाई के ख्वाब देखना बंद करो। ध्रुव राणा तुम्हारी औकात और पहुंच से बाहर है। तारा को अच्छा खासा सुनने के बाद अलीजा वहां से चली गई। वो इसी मकसद से वहां पर आई थी। उसे ध्रुव की शादी की न्यूज अलीशा और वीर के बजाय तारा को देने में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो उसका उतरा हुआ चेहरा देखना चाहती थी। भले ही कोई और तारा के जज्बातों को ना समझ पाए, लेकिन एक तो मुलाकातों में ही अलीजा ने तारा की आंखों के जज्बातों को पढ़ लिया था। अलीजा के जाने के बाद तारा अपने कमरे में आई और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। तारा जल्दी से बाथरूम में गई और उसने शावर ऑन किया ताकि कोई उसकी आवाज ना सुन सके। वो अंदर जोर जोर से रो रही थी। मुझे पता था यही होना है, वो मेरा नहीं है और ना ही हो सकता है, मेरा दिल टूटने वाला है। सब जानते हुए भी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मुझे? आई हेट माई सेल्फ, मुझे कभी वो नहीं मिला जो मैंने चाहा था। फिर इस बार कैसे मैंने ये सोच लिया कि ध्रुव मेरा होगा, तारा ने सिसकते हुए कहा। वो काफी देर तक ऐसे ही वहां बैठकर आंसू बहाती रही। कुछ देर बाद जब तारा को हल्का महसूस हुआ तो उसने अपने दिल को समझाया और चेंज करके बाहर आ गई।
वहीं दूसरी तरफ ध्रुव याशी के साथ बिजी था। इस बीच युग और कृषा के पास सारा का कॉल आया। वे दोनों तो ध्रुव के इस डिसीजन के बारे में जानते तक नहीं थे। कृषा ने उसका कॉल रिसीव करके स्पीकर पर करके कहा, क्या बात है सारा, तुम्हें याद आया कि तुम्हारी एक बहन भी है, वरना तुम्हारे कॉल तो अक्सर युग के पास आते हैं। ओ रियली, कौन पिछले 2 महीने से अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर गया हुआ है? कुछ तो ख्याल करो, अब तो तुम्हारे बेटे की भी शादी हो रही है, सारा तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कृषा इधर उधर देखने लगी, तो वहीं युग ने कृषा को पीछे से आकर कसकर हक कर दिया था। वो सारा से बोला, और तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तुम्हारा हस्बैंड अनरोमांटिक है, उसका गुस्सा तुम हम पर क्यों उतार रही हो? रही बात ध्रुव की, तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि जब बेटा सगाई कर ले तो उसके बाद माँ बाप को रोमांस करने का हक नहीं है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, सारा ने हंसकर कहा। चलो बातें बहुत हो गई, अब मुझे बताओ कि दोनों वापस कब आ रहे हो? मैं अकेले शादी की सारी जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली हूँ। भले ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सारा काम संभाल लेती है, लेकिन घर वालों को भी सब कुछ देखना ही पड़ता है। क्या देखना पड़ता है सारा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृषा ने कन्फ्यूजन से पूछा। मजाक कर रही हो क्या? यहाँ ध्रुव की सगाई और शादी की तैयारी चल रही है और उसकी मॉम को पता तक नहीं, सारा ने हल्का चौंकते हुए कहा। बात सुनकर तो युग और कृषा भी हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। युग ने आंखों ही आंखों में कृषा को शांत रहने के लिए कहा। फिर युग ने कॉल अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेबी डेविल की बात हुई क्या तुमसे? उसने क्या डिसीजन लिया है अपनी शादी को लेकर? ध्रुव से मेरी मैसेज में ही बात हुई थी, लेकिन मेहर यहाँ पर आई थी। वे नेक्स्ट वीक सगाई कर रहे हैं और उसके 5 दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकला है। क्या सच में तुम दोनों को कुछ पता नहीं है? सारा ने पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने इतना बड़ा फैसला कृषा और युग के बना लिया था। तो तुम्हें क्या लगता है सारा सिंघानिया, मैं यहाँ खड़ा होकर मजाक कर रहा हूँ? कॉल रखो और वही करो जो बेबी डेविल ने कहा है, लगता है मुझे उससे बात करनी होगी, युग बोला और उसने कॉल कट कर दिया था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। उसने ध्रुव को किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं था, लेकिन साथ ही उसे ये कभी गवारा नहीं था कि ध्रुव खुद को धोखा दे। अचानक युग ने कृषा को छोड़ दिया था। इतने सालों से साथ रहते हुए कृषा को ये तो समझ आ गया था कि युग के कौन से हाव भाव का क्या मतलब होता था। युग वहां से जाने को हुआ, तभी कृषा ने उसे रोका और बोली, गुस्सा मत करो ना बच्चा है, हम बार बार उससे उसके इमोशंस और प्यार की बातें कर रहे थे, तो उसने शादी करने का सोच लिया होगा। युग ने कृषा की तरफ पलट कर देखा तो कृषा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। इतनी ही देर में उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। शादी करने का सोचना और खुद को धोखा देने में फर्क होता है क्रिश, पहले सगाई करने के बारे में नहीं बताया और अब शादी करने के बारे में नहीं बता रहा, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें कि वो खुद से भाग रहा है? मैं आखिरी बार इस बारे में उससे बात करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी उसने कुछ नहीं कहा, तो मैं भी देखता हूँ कि इस तमाशे को कौन रोकता है, युग ने बेहद ठंडी आवाज में कहा और वहां से ध्रुव के पास जाने लगा। कृषा हमेशा इस तरह की सिचुएशन से बचने की कोशिश करती थी जहां ध्रुव और युग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे। ऐसे हालात में वो ना तो किसी का पक्ष ले सकती थी और ना ही उन दोनों में से किसी को समझा सकती थी। मुझ मासूम के साथ ही इतना जुल्म होना जरूरी है क्या? क्या हो जाता जो ध्रुव शादी करने के बाद पहले युग को बता देता? हद होती है, कैसे रोकू इन दोनों को? कृषा ने लाचारी से कहा और दौड़कर युग के पीछे जाने लगी। वहीं इस वक्त ध्रुव याशी के साथ उसके प्लेरूम में था। इस वक्त याशी के साथ बैठा था, लेकिन वो खोया हुआ लग रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा झटके से खुला तो ध्रुव का ध्यान टूटा। दरवाजे पर युग खड़ा हुआ था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ बता रहे थे कि अब उन दोनों के बीच फिर से एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। अगर युग ने दरवाजा खोलने के बाद कुछ नहीं कहा तो उसकी एकमात्र वजह याशी थी, जो ध्रुव की गोद में बैठी हुई थी। लेकिन ध्रुव की कब तक याशी के सहारे युग के गुस्से से बच सकता था? सो डेविल वर्सेस बेबी डेविल, कौन जीतेगा?